मेरी मैंने पायरी तीन रतन
सखीरी मैंने
ओम शांति। हम बाबा के मीठे मीठे बच्चों का संसार क्या है? बाबा, मुरली और मधुबन। बाबा ही संसार है। जैसे कहावत है, जल की मछली जल में भली, अर्थात मछली के लिए उसका संसार जल है। अगर मछली को जल से बाहर निकाले तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसे हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए जो संसार है, बाबा, मुरली और मधुबन। मुरली हम सभी के लिए जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। मुरली पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाली है। कौड़े तुले जीवन से हीरे तुले बनाने वाली है। मुरली अंधों की लाठी है और संजीवनी बूटी है। मुरली ज्ञान तलवार है, सोर्स ऑफ इनकम है, जीवन का आधार है, उस पद की प्राप्ति कराने वाला है। शास्त्रों में गायन है, जब मुरली चलती थी, मुरली की धुन जब गोपियां सुनती थी तो नाच उठती थी, झूम उठती थी। ऐसे बाबा की ज्ञान मुरली चलती है तो हम सभी आत्माएं, आत्मा रूपी गोपियां नाच उठती हैं, झूम उठती हैं। और मधुबन हम सभी के लिए पावन तीर्थ स्थान है। मधुबन की बाबा ने कितनी महिमा की है। मधुबन में चार धाम है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि यदि कोई अपना सिर भी काट के दे दे तो भी उतना भाग्य नहीं, मतलब कि यहां पर कदम रख सके वो। इतनी पावन भूमि है ये मधुबन। हम सभी का परमानेंट एड्रेस है। चाहे कोई बाबा का बच्चा घर गृहस्थ में रहता हो, सेंटर पे रहता हो, या इस संसार के किसी भी कोने में रहता हो, वो उनका सेवा स्थान है। परंतु ये बाबा का घर है और बाबा का घर सो उनके सभी बच्चों का घर है। तो बाबा मुरली और मधुबन से प्रेम, बाबा से प्रेम, बाबा ही संसार है। तो बाबा के प्रेम में लवलीन हो जाना। प्रेम आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। प्रेम बिगैर आत्मा रह नहीं सकती। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो किस रूप में प्रेम को अनुभव करता है? मां के रूप में। मां के मीठे बोल, उसकी पालना, उसकी परवरिश, उसके थप्पड़, वो भी प्यार में है सब। वो बचपन में बोल नहीं पाता है, फिर भी उसके मां के प्यार को महसूस करता है। वो जब प्यार का अनुभव करता है तो खुशी के मारे किलकारियां मारता है, फिर पिता के रूप में प्यार का अनुभव करता है। पिता का संरक्षण, आवश्यक वस्तुएं का प्राप्त होना, फिर उनके कंधे पर चढ़ के घूमना, मतलब मात पिता के रूप में बच्चा प्यार का अनुभव करता है। मात पिता को ईश्वर का रूप भी कहते हैं। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये गीत है। फिर बच्चा जब जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है, फिर भाई बहन के रूप में उस प्यार को अनुभव करता है। भाई बहन के साथ खेलना, कूदना, स्कूल जाना, कभी झगड़ा करना, कभी रूठना, कभी मनाना, ये सभी वो आत्मा प्रेम का अनुभव करती है हर संबंध से। फिर कभी मित्र के रूप में उस प्यार को अनुभव करती है, उसके साथ शेयरिंग, केयरिंग, सभी छोटी मोटी बातों का शेयर करना, एक दो का सहयोग देना। फिर जब आगे बढ़ता है तो फिर पति पत्नी के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में उस प्यार का अनुभव करता है। एक दो के साथ कसमें वादे करना, जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का, कितना गहरा प्यार का फीलिंग वो होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो संतान के रूप में उस प्यार का अनुभव करता है वो। तो हर संबंध में व्यक्ति को प्यार चाहिए ही चाहिए, वो प्यार अनुभव करता है। परंतु आज कलयुग के अंत में प्यार का स्थान स्वार्थ, ग्रीड, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, छल कपट, फरेब, ये स्थान ले लिया है। और चारों तरफ पूरे संसार में जैसे प्यार का अकाल पड़ गया है, जिसके वजह से इतने अपराध बढ़ गए हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा अपराधी हो, टेररिज्म हो, टेररिस्ट हो, वो कहां न कहां से, वो चाहे समाज से, चाहे अपने व्यक्तिगत परिवार से, वो प्यार को नहीं प्राप्त किया है, इसलिए उस रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे में हम सभी आत्माओं के, मतलब जो आत्मा भिन्न भिन्न संबंधों में, चाहे व्यक्तियों में, समाज में, उस प्यार को ढूंढते ढूंढते जब उस प्यार का अनुभव नहीं करती है, फिर लास्ट में अपना रुख, अपना नजरिया किधर करती है? उस पिता की तरफ, और कहता है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बॉडी कॉन्शियस से यदि ऊपर उठ के देखें तो चाहे कोई भी हो, स्त्री है, पुरुष है, भाई है, बहन है, संत है, महात्मा है, गुरु है, गोसाई है, नास्तिक है, आस्तिक है, या ज्ञानी हो या ज्ञानी है तो सभी आत्मा, और सभी आत्माओं को कभी न कभी उस परमात्मा ने प्यार से भरपूर किया था, जिसकी स्मृति सदा ही मन में बनी रहती है आत्मा के अंदर। इसलिए जब सृष्टि के अंत में जब सभी आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते जब उनके अंदर सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारा प्यार खत्म हो जाता है, तो फिर कहां न कहां से उस परमात्मा को पुकारने लगते हैं कि हे परमात्मा आओ, हमें प्यार की बस एक बूंद से हमें तृप्त कर दो। ऐसे में वो हमारी पुकार सुनकर वो प्यार के सागर इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमें अपना बनाते हैं और प्यार से निहाल करते हैं। कभी मां बनकर हमारी पालना करते, पिता बनकर हमारी सुरक्षा करते, हमें वर्षे का अधिकारी बनाते, कदम कदम पर हमारी मदद करते साथी बनकर के, और शिक्षक बनकर हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने का वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, और गुरु बनकर, सदगुरु बनकर सदगति सदगति देने का मार्ग बताते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का मार्ग बताते हैं, वरदानों से हमारी झोलियां भरपूर करते हैं। तो ऐसे प्यार के सागर के प्यार को कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा? जो आत्माएं प्यार को हर संबंधों में ढूंढती थी, जगह जगह भटकती थी, वो परमात्मा प्यार का सागर स्वयं ही प्यार है। वो अनोखा प्यार, वो दुर्लभ प्यार जो इस संगम पर ही हमें प्राप्त हो रहा है। प्रेम वैसे तीन प्रकार का होता है। एक है आकर्षण के वश प्रेम, जब व्यक्ति किसी के देह को, देह की सुंदरता को देखता है, सौंदर्य को देखता है, तो वो प्रेम अल्पकाल का होता है, क्षणभंगुर होता है, सदाकाल का नहीं होता है, उबाऊ होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरा होता है सुख सुविधा वैभव के आधार पर प्रेम, ये भी चिरकालीन नहीं होता है, इसमें डर भय चिंता सभी व्याप्त रहता है। और तीसरा है डिवाइन लव, अलौकिक प्यार, दिव्य प्यार, परमात्म प्यार। तो ऐसे प्यार के सागर में लवलीन होकर के जब हम उस पिता के प्यार में खो जाते हैं, तो कितना न हमें तृप्ति का अनुभव होता है। वो जो प्यार का सागर है वो हमारी खातिर, क्योंकि वो प्यार का सागर है, फिर भी हमारी खातिर वो हमारी प्यार का भूखा रहता है, हमारे प्यार का भूखा रहता है, हमारी भावनाओं का भूखा रहता है। वो निर्बंधन है, मुक्त है, फिर भी हमारे प्यार के बंधन में उस धाम को छोड़ करके हमारे पास खींचा चला आता है। वो अभोक्ता है, फिर भी हम उसे प्यार से भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार करता है। हम जब भोजन स्वीकार करते हैं तो भोजन से हमारी भूख समाप्त होती है, लेकिन वो जब भोजन को स्वीकार करता है तो स्वयं भोजन की भूख समाप्त हो जाती है। हम जब पानी पीते हैं तो उस पानी से हमारी प्यास बुझती है, लेकिन वो जब पानी को स्वीकार करता है तो स्वयं पानी की प्यास बुझ जाती है। क्योंकि प्रकृति के पांच तत्वों को भी तो प्यार चाहिए, यहां तक कि जंतु जानवर पशु पक्षी ये प्रकृति सभी को प्यार चाहिए। तो वो इस संगम युग पर आकर सभी को प्यार से तृप्त कर रहे हैं। जब हम ऐसे प्यार के सागर पिता के प्यार में लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हम सभी का जीवन क्या होता है, निखरने लगता है, सभी का जीवन सवर जाता है, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। शास्त्रों में कहावत है, ऐसे शास्त्रों में है दिया है कि जब श्री कृष्ण के पास सुदामा आते हैं अपनी दयनीय हालत में, जब वो बहुत निर्धन होते हैं, तो सुदामा की पत्नी उनको श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरणा देती है। जब वो श्री कृष्ण के पास आते हैं तो श्री कृष्ण कितना ना प्यार से उसे उनसे मिलते हैं, उनके पांव उनके चरण धुलाई करते हैं, उनके साथ लाया हुआ जो चावल मुट्ठी वो भी स्वीकार करते हैं, और लास्ट में वो अपने मित्र से पूछते हैं कि कहो मित्र सब कुछ ठीक है ना। लेकिन सुदामा संकोच करते हैं, संकुचाते हैं कि हम अपनी निर्धनता के बारे में, अपनी दयनीय अवस्था के बारे में अपने मित्र से कैसे बताऊं। तो संकोच बस कह देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर उनके सुदामा के वहां से जाने के बाद जस्ट उनके साथ श्री कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जो बैठी रहती है, वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप तो प्रभु अंतर्यामी हैं, उनके बारे में सब पता है क्या हालत उनकी, फिर भी आप कैसे स्वीकार कर लिया आपने कि सब कुछ ठीक होगा। श्री कृष्ण जब वो बोले कि सब कुछ ठीक है, तो श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर बोला कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा। तब रुक्मिणी ने जब यह प्रश्न पूछा तो श्री कृष्ण ने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा, कौन बोल रहा है ये, अगर नहीं भी ठीक होगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे जब हम इस देह के भान से परे उठ करके इस संसार की सारे जितनी भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम्स है, सबको भूल करके उस पिता के पास जब हम जाते हैं, वतन में उनके साथ बैठ जाते हैं और उनके प्यार में एकदम खो जाते हैं, वो ज्योति बिंदु के सम्मुख, और जब प्यार का गहरा फीलिंग होता है, और उस समय यदि हम संकल्प करें कि हाँ बाबा आई एम ओके, दिल से बाबा हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है, तो वो प्यार का सागर भी क्या बोलेगा, तथास्तु मेरे मीठे बच्चे, आपके जीवन में ऐसा ही होगा। ये हम सभी लाखों भाई बहनों का अनुभव है। संसार में तो लोग यही समझते हैं कि इन्होंने कोई अपने गुरु को ही भावना बस भगवान मान लिया है, लेकिन हम सभी भाई बहनों का ये अनुभव है। उस पिता को जो परम धाम में रहते सत्यम शिवम सुंदरम में स्वयं आकर हमें अपना बनाते हैं, हम सभी भाई बहन ने उन्हें अपने आंखों से देखा है, बोलते हुए सुना है, भोग स्वीकार करते हुए देखा है, तो कितना न वो अनोखा प्रेम है उस पिता का हमारे प्रति। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें, और जैसे मछली का जो संसार है जल है, ऐसे हमारा संसार एक तो बाबा का प्रेम है, दूसरा इसमें सेफ रहने के लिए हमें बाबा ने हमें जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी का ताज दिया, वो है सेवा। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारा जीवन हमारे लिए नहीं रहता है, वो संसार के लिए अर्पित हो जाता है। हम अपने लिए नहीं सोचते, संसार के लिए सोचते हैं। हम खुद के लिए नहीं जीते, औरों के लिए जीने लगते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के लिए सोचता है, जैसे आज सारा संसार मेजॉरिटी सिर्फ अपने फैमिली अपने तक ही सीमित है सोचने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए। और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए सोचता है तो उसका भाग्य भी उससे रूठ जाता है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण एक नगर में घूम रहे होते हैं, तो घूमते घूमते वो एक चौराहे पर एक भिखारी को देखते हैं। अर्जुन के मन में दया आती है कि क्यों ना हम इसे कुछ धन दे करके उसे भी साहूकार बना दे, तो उसे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो अपने इस मन के भाव को वो श्री कृष्ण को बोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये तो सभी का अपना अपना भाग्य है। फिर भी अर्जुन थोड़े जिद पे अड़े रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ दे के देखता हूं। तो वे अर्जुन सोने की मुहरें एक थैली में भर करके उस भिखारी को देते हैं। वो भिखारी बहुत प्रसन्न होता है और जब अपने घर की तरफ चलता है तो बहुत सारे मन में विचार आते हैं कि मतलब कि कितना अपना अच्छे मकान बनाऊंगा, पूरे परिवार के साथ अच्छे से रहूंगा, सुख से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, कोई न कोई व्यापार कर लूंगा। ऐसे मन में सोचते हुए जाता है तो एक चोर आता है और बटुआ लेकर के भाग जाता है उसका। फिर अगले दिन वो फिर उसी चौराहे पर आकर भीख मांगने लगता है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण फिर घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं, फिर उसे खड़ा पाते हैं, तो श्री कृष्ण तो मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन अर्जुन को लगता है कि अभी तो कल ही इसको दिया था, फिर क्या हुआ। तो उन्होंने जाकर के उस भिखारी से पूछा कि क्या हुआ, अभी आज क्यों भीख मांग रहे हो। तो उसने बताया कि चोर लूट लिया वो। तो उस दिन अर्जुन ने फिर अपने हाथ से वो सोने की अंगूठी निकाल के उसे दिया कि ले जाओ, इसे बेच करके अपना जीवन यापन करो। पिछली बार की तरह वो भूल नहीं करता, उसे छुपा कर ले जाता है। कहाँ छुपाता है, जो उसके साथ पानी का कमंडल लाता है उसमें रख देता है वो, और अपनी झोपड़ी में पहुंचता है तो अपने उसमें रख देता है झोपड़ी में, फिर कहीं चला जाता है। उस दिन उसकी पत्नी होती है, वो सोचती है कि बहुत कपड़े धुलाई करने हैं, नदी में चलती हूँ और ये जो कमंडल ये भी गंदा हो गया, इसके भी साफ कर देती हूँ। फिर वो नदी में जब धुलाई कर रही होती तो अंगूठी नदी में गिर जाती है। जब उसको भिखारी को पता पड़ता है तो फिर अपने सिर पे हाथ रख लेता है, अपने दुर्भाग्य को कोसता है वो, और अगले दिन फिर वो चौराहे पर आके खड़ा हो जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण घूमते घूमते जब वहां पहुंचते हैं, और अर्जुन जब देखता है कि फिर आज भी यहां भीख मांग रहा है, तो फिर पूछता है कि कारण क्या है, तो अपनी सारी व्यथा वो बताता है। तब अर्जुन आखिर हार मान जाता है कि सच में इसके भाग्य में नहीं है। उस दिन श्री कृष्ण उस भिखारी के हाथ में 2 पैसे देते हैं, बहुत थोड़े धन देते हैं। वो 2 पैसों को लेकर भिखारी चला जाता है, लेकिन मन में सोचता है कि इसका मैं करूंगा क्या, किस काम मेरे आएगा इतने थोड़े से 2 पैसे। जब वो जा रहा होता है तो देखता है मार्केट में एक मछली वाला मछली मारकर मतलब लाके नदी से ला करके बेच रहा होता है। तो मछली जिंदी रहती है, वो तड़पती रहती है, तो उसके मन में दया आती है कि क्यों ना ये तो 2 पैसे मेरे काम नहीं आएंगे, अगर मैं उस जो बेच रहा है उसको मैं 2 पैसे दे दूँ मछली को लेकर के, उसके प्राण बचा लूँ कितना अच्छा होगा। तो वो मछली को खरीद लेता है और अपने कमंडल में पानी में रख के डाल देता है वो। फिर नदी में जाके जब छोड़ता है तो देखता है कि अंगूठी जो होती है वो मछली के मुख से निकल के वो कमंडल में आ चुका होता है। तो खुशी के मारे वो चिल्लाता है कि वाह मिल गया पा गया। तो वहीं कुछ दूरी पर चोर छिपा रहता है जिसने धन लूटा था, वो समझता है कि शायद इसने मुझे देख लिया है, तो जाके उसके पांव पड़ता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया महाराज को नहीं बताना नहीं था हमको बहुत सजा मिलेगी, मैं आपके धन को वापस करता हूं। वो भी मिल जाता है, वो जो सोने की मोहरे का जो पोटली रहता है वो भी मिल जाता है, अंगूठी मिल जाता है। फिर वो बहुत खुश होके अपना जीवन यापन करने लगता है। अगले दिन जब ये चौराहे पर जब घूमते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण, फिर वो नहीं दिखाई देता है चौराहे पर। फिर वो पता करते हैं कि आखिर उसका हुआ क्या। जब उनको पता पड़ता है कि अभी तो वो साहूकार बन गया है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से इसका राज पूछता है कि आखिर बात क्या है, मैंने जब सोने की मुहरें दी अंगूठी दी तो भी वो निर्धन ही था, चोर लूट ले गए, उसके हाथ से सब फिसल गया, लेकिन आपने केवल 2 पैसे दिया और फिर वो उसका भाग्य कैसे बदल गया। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब तुमने दिया तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा इतने सुख से रहूंगा, लेकिन जब मैंने केवल 2 पैसे दिया तब उसने एक मछली के ऊपर दया करके रहम करके उसके प्राण बचाए, जब उसकी भावना दूसरे के प्रति बदली, दूसरे के प्रति अपने नजरिया अपनी सोच को बदला, तो वहां से उसका भाग्य का उदय हुआ। ऐसे ही जब हम बाबा ने हमें विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया है, विश्व सेवाधारी बनाया है, तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि सभी का कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, तो हमारा भाग्य भी उदय होने लगता है और उदय हो रहा है। 4 भाई हैं एक घर में और उनके बीच में सिर्फ 1 रोटी है, और यदि वो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, तो 1 रोटी के 4 टुकड़े करके भी वो खाकर भी संतुष्ट रहेंगे, वो प्यार से रह लेंगे। लेकिन जहां यदि 4 भाई और कई हैं और उनके अंदर स्वार्थ है और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, तो 10-20 रोटियां भी कम पड़ जाती हैं। पिछले दिनों मुरली में आया था, एक हॉल के बारे में जिक्र किया था बाबा ने संडे की मुरली में, कि अगर स्नेह और प्यार है तो इसमें 5,000 तक भी बाबा के बच्चे समा सकते हैं, और यदि स्नेह और सहयोग नहीं है तो 500 भी समा नहीं सकते, उनके लिए कम जगह कम पड़ जाती है। तो निस्वार्थ होकर के रहना, सिर्फ और सिर्फ औरों के कल्याण के लिए सोचना। जब हम औरों के लिए सोचते हैं और औरों के लिए हम अपना जीवन अर्पण करते हैं संसार के कल्याण के लिए, उस अवस्था में हमारे लिए कौन सोचता है? हमारे लिए स्वयं भगवान सोचते हैं, हमें हमारी आवश्यकता से भी ज्यादा प्राप्ति होती है। आवश्यकता से ज्यादा प्राप्ति होने पर एक बात याद आ रही है, बाबा बोलते हैं कि बच्चे आपको इच्छा मात्रम अविद्या बननी है, कोई भी इच्छा अभी नहीं होनी चाहिए। परंतु कभी कभी हम ये सोचते हैं, बाहर के लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि हम इच्छा ही नहीं रखेंगे तो धंधा दूरी कैसे करेंगे, खाना तक कैसे खाएंगे। तो इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब बाबा ने ये नहीं बताया है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ करना है, धंधा दूरी भी करना है, जो भी घर गृहस्थ में रहते हैं वो परिवार की पालना भी करनी है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब कि अनावश्यक रूप से हम उन चीजों के पीछे ना भागें। जैसे कहते हैं ना कि खाने के लिए हमें तो दाल रोटी मिल रही है, लेकिन हम खा रहे हैं दाल रोटी जो भी भोजन, लेकिन इच्छा कर रहे हैं जलेबी खाने का जो प्रेजेंट में है नहीं। इच्छाओं के पीछे तो आज संसार सारा भाग रहा है, भागदौड़ है, एक इच्छाएं पूरी हुई दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग आज क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। अपराध जगत में लोग तो अपराध कर रहे हैं, लेकिन एक रॉयल लोग वो तो है घोटाले धोखाधड़ी ये सब तो है इनकी, जिनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। जो बहुत अपने को रईस अमीर समझ रहे हैं वो लोग एक मेथड का प्रयोग कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कितना न उनके लिए नुकसान है शायद उनको पता नहीं है। इस पर थोड़ा फोकस डालने समय है। जब हम इच्छा करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं किसी चीज की प्राप्ति का, जैसे हम संकल्प आज किए कि हमें आइसक्रीम खाना है, सपोज हमें वो आइसक्रीम मिल जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमने संकल्प किया और हमें वो प्राप्ति हो गई। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हम जब ये प्रैक्टिस करते अभ्यास करते कि हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है तो हमारे अंदर वो शक्तियां धीरे 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 बढ़ती है, डेवलप होती है, हमारे अंदर विल पावर बढ़ता है, जिसके कारण हम अगर गलती से भी संकल्प कर लें कोई भी इच्छा के अधीन होकर के, वो रस या टेस्ट के अधीन होकर के वो हमें चाहिए तो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो पावर आ गई। लेकिन जैसे ही हम संकल्प किए कि हमें आइसक्रीम खानी है वो प्राप्त हो गया हमें, तो वो जो प्राप्ति है वो किस आधार पर हुई, हमारे जो शक्ति हुई ना उसी की उसी में से मिला वो कट होके। तो संगम में जैसा ये बाबा बोलते हैं कि एक का पदम गुना जमा होता है, ऐसे एक का पदम गुना हमारा लॉस भी होता है। संसार में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं लोग, बिना मेहनत से ज्यादा सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। लोग पोस्टर लगा देते हैं हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, और इस सपने में जीने लगते हैं और धीरे धीरे वो प्राप्ति भी होती है, लेकिन वो उनके ही भाग्य में से आता है, कटता है। जो आज तो वो जैसे बैंक में से हम लोन ले लेते हैं लेकिन भरते तो हम ही हैं बाद में, उनका मतलब कितना भविष्य अंधकार में पड़ता है, उनके साथ इसका एहसास नहीं होता है। संसार में लोग धन प्राप्ति के लिए अपना अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन मिलता है, उन्हें पैसे दिया जाता है, लेकिन एक जन्म के लिए तो मिलता है उन्हें सारी सुख सुविधाएं, वो कहां से मिलता है, अपने भाग्य में से वो एडवांस में ले लेते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट जन्म बन के भिखारी के रूप में चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही भाग्य में से उन्होंने वो प्राप्त किया है। तो बाबा ये सारे कर्मों की गुह गति का राज हमें आकर समझाते हैं। तो फिर हमने क्या देखा इस ब्राह्मण जीवन में सेफ रहने के लिए, बाबा, मुरली और मधुबन, बाबा के प्यार में हमेशा लवलीन रहना, उनके प्यार में खोए रहना, कल बाबा पुनः अपना धाम छोड़कर के इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं, फिर उनसे अपने प्यार से झोलियां भरना, फिर सेवा में अपना कनेक्शन, सेवा में अपना संपूर्ण रूप से योगदान देना। और बाबा ने जो मर्यादाएं दी इस ब्राह्मण जीवन में सेफ रहने के लिए, उन मर्यादाओं के अंदर रहना, उन मर्यादाओं से बाहर क्या लेके जाती है हमें खींच करके, वो इच्छाएं, तो इच्छाओं को छोड़ करके इच्छा मात्र में अविद्या बनना। ओम शांति।
कर लिया।